दोस्तों, भारत की पहचान उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसकी कला के तौर पर है। देश विदेश के आर्टिजन्स यानी कि कारीगर भारत की कला को जानने, उसको सीखने के लिए भारत हर साल आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के युवान और खास करके आर्टिजन्स के परिवार के लोग ही या परिवार की युवा पीढ़ी ही इस कला से दूर होती जा रही है। भारत की युवा पीढ़ी अपने हेरिटेज से ज्यादा नजदीक जाए, उसको समझे और उसको सराहे, इसी उद्देश्य के साथ मेधावी गांधी और सुनीरा टंडन नाम की दो युवतियों ने शुरू किया हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय दिल्ली स्थित है, लेकिन पूरे भारत में उसकी छोटी बड़ी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो आइए जानते हैं हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन और उसके द्वारा चलाई जा रही प्रवृत्तियों के बारे में। मेधावी, SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
जानना चाहेंगे कि हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या उद्देश्य था उसका?
हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन हमने शुरू किया साल 2009 में। मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी जब मुझे एक आर्टिस्ट मिली और मैंने उनका काम देखा। मुझे ऐसा लगा कि ये कितना अजीब है कि हम लोग अब देश की कला के बारे में कितना कम जानते हैं। देश के हेरिटेज के बारे में हमें ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी भी साल में बताया जाता है, या हमें कोई एक्सपोजर नहीं था उस वक्त टुवर्ड्स आवर ओन हेरिटेज। तो इस करके हमने सोचा कि हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे जिसमें यंग पीपल अपने हेरिटेज को पहचाने, जाने और उसके साथ जुड़ के काम भी करना चाहें। And they should take pride in their own heritage. So with that objective, we started Happy Hands. And of course, हमारा एक larger उद्देश्य सिर्फ revival और youth को involve करने के अलावा ये भी था कि artist जो है वो भी अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनने के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि हमने ये नोटिस किया था कि कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे आर्टिस्ट बने। तो डिग्निटी के साथ आर्टिस्ट बनना इज समथिंग जो हम एनकरेज करना चाह रहे थे।
तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हैप्पी हैंड्स फाउंडेशन करता है जिससे जो उद्देश्य है उसको साधा जा सके?
अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से चेंज होते हैं, मतलब हमारे अलग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हैं। तो एक है जहाँ हम वी बिल्ड पब्लिक इंटरेक्शन विद द आर्ट। इसमें हम पब्लिक को आर्ट्स के में जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम से करते हैं। जैसे कि एक हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है हमारे वर्कशॉप आर्ट पिटारा करके। हम एक समर सीरीज, एक विंटर सीरीज और बीच में बहुत वर्कशॉप रखते हैं जो कि आर्टिजन जनरल पब्लिक को सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ये कैसे बनाए। तो इससे पब्लिक को क्या होता है कि समझ आता है कि कितनी मेहनत का काम है, कितना पेशेंस चाहिए, कितना स्किल चाहिए एक पपेट बनाने में या एक पेंटिंग बनाने में। और फिर जब वो दूसरी बार आर्टिस्ट से खरीदते हैं तो एटलीस्ट वो बारगेम नहीं करते, मतलब और कुछ नहीं तो इट एड्स टू देयर ओन स्किल कि वो एक नई कला सीख सकते हैं। क्योंकि इन वर्कशॉप में हम सिर्फ स्किल नहीं पर उसकी थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से मिथ, थोड़ी सी फोकलोर भी बताते हैं। दूसरी जो हम करते हैं वो एक आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम है जो हम कलाकारों के लिए रखते हैं ताकि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली काम करके और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस जिसमें वो दूसरी कंट्री के आर्टिस्ट के साथ काम करें। इनफैक्ट हमने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के साथ भी हमने एक प्रोग्राम रखा था। इंडिया के चार आर्टिस्ट ने UTS सिडनी के बच्चों के साथ फैब्रिक पे काम किया था, अलग अलग टाइप के फैब्रिक टेक्सटाइल्स पे कि उन्होंने इकट्ठे मिल के बनाया। तो डिजाइन सेंसिबिलिटी बहुत ही ऑस्ट्रेलियन थी, टेक्निक इंडियन था और बच्चों को टेक्निक भी सिखाया, उन्होंने खुद बनाया को भी बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने डिजाइन के बारे में सोचा कि ग्लोबली मार्केट क्या चाहती है और इस कदर वो लोग वो बना पाए। तो एक तो इस टाइप की रेजिडेंसीज हमारा एक प्रोग्राम और एक्टिविटी है। के बाद एक क्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है जहाँ हम लोग कम्युनिटी को आर्टिजन एंटरप्राइज कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं, उनकी स्किल को थोड़ा अपग्रेड करके। क्योंकि आर्टिस्ट ना बिजनेसमैन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसको अपनी स्किल, उसकी कला, इतनी पेशेंस चाहिए होती है, वो बनाता है पर वो बेच नहीं पाता है और जो बेचते हैं वो कलाकार नहीं होते हैं। तो आर्टिजनल बिजनेस कैसे संभाले एक हम वो दिखाते हैं। कि हमने हाल ही में अभी एक पपेट्री प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने औरतों को खास करके इन्वॉल्व, वो लोग अपने दादा से पापा से सीख के अपने हस्बैंड्स के साथ एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं अब ये पपेट्स बना के।
जी बहुत मजा आया ये सुनकर कि कल हमारी जो हेरिटेज है उससे करीब हम कैसे जा सकें। मेधावी जी, जब इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम दोनों बात कर रहे थे तो आपने मुझे बड़ी ही दिलचस्प प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, वो था स्टोरी टेलिंग, यानी कि वार्ता कथन। आज के दौर पे कहीं ना कहीं वो गायब सी हो रही है, लुप्त सी हो रही है, तो ये जो बात है स्टोरी टेलिंग की, उसको आप किस तरह से पुनर्जीवित करने की या उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
जी, हमारा एक प्रोजेक्ट है द स्टोरी टेलर्स कलेक्टिव करके। हमने भी इसीलिए शुरू किया ये प्रोजेक्ट क्योंकि भारत में बहुत सारी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस है, नैरेटिव आर्ट फॉर्म्स है, जैसे कि चेरियाल पेंटिंग्स है, पटुआ स्टोरी टेलिंग है, फड आर्ट है, ये सब इस तरीके की स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस है जिसमें बंजारा स्टोरी टेलर्स स्क्रोल्स और ये सब ले लेके गाँव गाँव जाते थे और स्क्रोल्स को कहानी के रूप में सुनाते थे। इन एक्सचेंज वो थोड़ा खाना पीना मांग के खा लेते थे, ऐसे उनका लाइवलीहुड चलता था। क्योंकि हमारा मीडिया इतना एडवांस होता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, अब गांव में भी स्टोरी टेलिंग और इस तरीके के एंटरटेनमेंट मोड खत्म हो गए। तो इस करके जो आर्टिजन है अब वो किसके लिए बनाए, क्योंकि अब बंजारा स्टोरी टेलर तो आते नहीं है खरीदने उनसे स्क्रोल उनको बनाने के लिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हमने 18 से 25 साल के युवाओं को हमने ट्रेन किया एक आर्ट फॉर्म में। तो जैसे इस साल हमने पटुआ आर्ट पे फोकस किया, तो पटुआ बंगाल का एक नैरेटिव आर्ट फॉर्म है, बहुत फेमस है। इसमें हमने उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म को हम लोग ग्राफिक नॉवल के रूप में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं।
आगे जानते हैं कि भविष्य की क्या योजना है फाउंडेशन की।
हम लोग एक्चुअली अभी ग्रो कर रहे हैं, तो काफी सारे हमारे प्लान्स हैं। तो है कि हम लोग अपने पपेटियर जो ग्रुप हमने अभी रिसेंटली बनाया है, इन सब एंटरप्राइजेस जो आर्टिजन के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, इनको ग्रो करने के लिए हम जितने शोज जितने शोकेसेस कर सके वो करेंगे आने वाले साल में। और ये जो आपने कहा स्टोरी टेलर्स कलेक्टिव के बारे में, जैसे आप ज्यादा जानना चाहेंगे, वैसे हम भी इंडिया के कम हमारे पास कुछ नहीं तो 2000 अलग किस्म के स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस है, तो हम उसको भी एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि हम जितनी कर पाए स्प्रेड कर सका, कि हम अपने देश की कला को जितनी जगह लेके जा पाए हम उतनी जगह उसको लेके जा पाएंगे। और हम ये भी आशा करते हैं अगर कोई हमें सुन रहा है जो हमारे से जुड़ना चाहे, हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहे, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि पीपल ऑलवेज हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेधावी जी हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू हरिता।